गण व धातुएं पाणिनि ने गणों की रचना करके संस्कृत भाषा को सुरक्षित बना दिया है। अनेक शब्दों का एक नियम विशेष के अनुसार एक समूह में एकत्र कर लिया गया और उनका संचालन एक ही नियम द्वारा होने लगा। गण पाठ करके पाणिनि ने भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि शब्दों को एक सूत्र में रख दिया। गद्य पाठों का एक क्षेत्र विस्तृत है और इनमें नियमों के अनुसार अन्य नवीन शब्दों का भी रूप चलाया जा सकता है। काशिका में गणों की संख्या एवं प्रत्येक के अंतर्गत आए हुए शब्दों की सूची सुरक्षित है। पतंजलि एवं कात्यायन ने भी इन गुणों की रक्षा करने में योगदान दिया है। गणों की रचना का आधार ध्वनि है। धातुओं का भी वर्गीकरण गणों के रूप में है। इनका भी आधार ध्वनि ही है। ध्वनि एवं उससे निकलने वाले अर्थ का बार बार अवलोकन करके पाणिनि ने गणों की रचना की है। पाणिनि ने समस्त धातुओं को 10 गणों में बांट दिया है। अष्टाध्यायी के अनुसार संस्कृत में कुल 1944 धातुएं हैं, जो भुवादि, आदादि, जुहत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि गणों में विभक्त हैं। धातुओं का एक अन्य वर्गीकरण आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी के रूप में भी है। आत्मनेपदी धातुएं कर्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है, परस्मैपदी दूसरों के लिए तथा उभयपदी दोनों के लिए। संस्कृत में 1010 धातुएं भुवादि हैं। यदि केवल भुवादि धातुओं का ही ज्ञान संस्कृत छात्र को करा दिया जाए तो वह संस्कृत के वाक्य सरलता से लिख सकता है। संस्कृत भाषा का अपना ध्वनि विचार, फोनोलॉजी, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, अर्थ विचार, सेमेंटिक्स तथा वाक्य विचार, सिंटैक्स है। इन सभी का विचार संसार में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही हुआ है। संधि, संस्कृत भाषा में संधि तथा समास बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो छात्र संधि विच्छेद एवं समास विग्रह करने में असमर्थ रहता है वह संस्कृत भाषा के अमृत का पान नहीं कर पाता। आजकल हाई स्कूल कक्षाओं के छात्र संधि एवं समास को प्रायः बहुत कठिन समझते हैं और उन्हें टालने का प्रयत्न करते हैं। कुछ व्यक्तियों ने यह प्रचार भी करना प्रारंभ कर दिया है कि संस्कृत लिखने में संधि ना की जाए तो ठीक रहेगा। संस्कृत को सरल बनाने के नाम पर कुछ लोगों ने संधि विहीन शब्द लिखना आरंभ कर दिया है, किंतु संस्कृत की परंपरा रही है कि लिखित संस्कृत में संधि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है। संहितैक पते नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुसा विव क्षामपेक्षते, अर्थात सुबंत या तिदंट पद में उपसर्ग युक्त धातुओं में तथा समास में संधि अनिवार्य है, वाक्य में ऐसी अनिवार्यता रही है। वाक्य में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। संधि कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है। छात्रों को यह भलीभांति समझा देना चाहिए कि संधि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम बोलने में सदा संधि करते ही रहते हैं। संसार की भाषाओं में ध्वनियों का मेल हो जाता है। बिना संधि किए ध्वनियों का प्रवाह युक्त उच्चारण संभव ही नहीं। ध्वनि अंग्रेजी में जब हम दिस इज अ बॉय कहते हैं तो दिस इज ही कहते हैं। संस्कृत में ध्वनियों का मेल केवल बोलने तक ही सीमित नहीं रहता, हम संधि को लेख में भी व्यक्त करते हैं। अन्य भाषाओं में भी कुछ शब्दों का लिखित रूप संधि प्रदर्शित करता है। उदाहरण, डिस्क्रिप्शन शब्द डिस्क्राइब प्लस सन से ही मिलकर बना है। हिंदी में लाना शब्द ले आना से ही बना है, किंतु अन्य भाषाओं में लिखित रूप में संधि को आवश्यक नहीं माना जाता। हमें यह समझ लेना चाहिए कि रमा प्लस ईस को अलग अलग रखने में विलंब होगा। प्रवाह में रमा ईस रमेश के रूप में ही उच्चरित होगा। यदि हम उच्चरित रूप में रमेश बोलते हैं तो लिखित रूप में रमा ईस क्यों रहें? इसीलिए संस्कृत में संधि अनिवार्य कर दी गई। अतः संस्कृत में छात्र को संधि का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उसे यह भी विदित होना चाहिए कि कुछ शब्दों में संधि विच्छेद करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यथा विश्वामित्र मित्रा वरुणा सूर्याचंद्र मसो सत्यानाश अष्टावसु विश्वावसु अष्टापद वैश्वानर सर्वावाधा सनातन अष्टागव चंद्रापीड मूसलाधार दीनानाथ अष्टावक्र आदि शब्द कुछ विशिष्ट वैदिक शब्द हैं। संस्कृत में संधि पर बड़े विस्तार से विचार किया गया है। समास। संधि के अतिरिक्त समास भी संस्कृत की अपनी विशेषता है। अन्य भाषाओं में भी समास के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी में जब हम अन प्लस एबल अथवा इन प्लस एबिलिटी अथवा को प्लस ऑपरेशन को मिलाकर एक समस्त पद बना लेते हैं तो वहाँ पर समास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हिंदी में भी जब हम पनघट पनचक्की पनडुब्बी आदि शब्द कहते हैं तो वहाँ पर समास की करामात साफ दिखाई पड़ जाती है। संस्कृत में समास मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्यवी भाव। द्वंद्व के तीन भेद हैं और तत्पुरुष छह प्रकार का होता है। कर्मधारय और द्विगु समास एक प्रकार से तत्पुरुष के ही भेद हैं। समासों की संख्या निश्चित है, अतः उनकी शिक्षा में कोई विशेष कठिनाई नहीं आनी चाहिए। लिंग। संस्कृत में संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। अंग्रेजी में लिंग भेद पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व के आधार पर है। यदि कोई शब्द पुरुष का अर्थ देता है तो अंग्रेजी में वह मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, स्त्री का अर्थ देता है तो फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, निर्जीव का अर्थ देता है तो न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग तथा और स्त्री तथा पुरुष दोनों का अर्थ देता है तो कॉमन जेंडर उभयलिंग हो जाता है। हिंदी में लिंग निर्धारण अंग्रेजी की तरह ना होकर संस्कृत की तरह होता है। अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ने के कारण छात्रों को हिंदी व संस्कृत के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है और वे इसे एक समस्या समझ लेते हैं। संस्कृत में लिंग का आधार प्रत्यय है और अभ्यास से ही इसका ज्ञान हो सकता है। वचन। संस्कृत में वचन के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है। अंग्रेजी तथा हिंदी में एक वचन तथा बहुवचन ही होते हैं, किंतु संस्कृत में द्विवचन भी होता है। सामान्यतया छात्र की समझ में यह नहीं आता कि एक और अनेक के बीच में दो को क्यों रखा गया। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि संस्कृत के विद्वानों ने जगत का अत्यंत बारीकी से निरीक्षण किया है। जगत में एक और अनेक के ही समान दो भी प्रबल है। पदार्थों की जोड़ी की आवृत्ति एक और अनेक से कम नहीं है। यह युगल बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। बिना युगल के सृष्टि ही संभव नहीं। स्त्री पुरुष, माँ बाप, भाई बहन, पाप पुण्य, दिन रात, संयोग वियोग, उपकार अपकार, रथ के दो चक्र, दो नेत्र, दो कान, दो हाथ, दो पैर आदि के युगल ने व्यक्ति को दो का बोध कराया और संस्कृत के आचार्यों ने उसे दो को भाषा में भी अभिव्यक्त किया, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। कारक। जहाँ तक कारकों का प्रश्न है, इनका ज्ञान बड़ी सावधानी से कराना चाहिए। संस्कृत में निम्नलिखित 6 कारक कहे गए हैं, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानव तथैव च, अपादानाधिकरण मिथ्या हुआ कार कांड ईसट, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण ये 6 कारक हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहा जाता क्योंकि उनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संज्ञा शब्दों के 8 रूप होते हैं और छात्रों को रूप के बनने की प्रक्रिया के झंझट में न डालना ही उचित है। किसी रूप की सिद्धि व्याकरणों का विषय है, छात्रों को बने बनाए रूप समझा देना ही उचित है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्दों के रूपों का भी अध्यापन आवश्यक है क्योंकि इनका प्रयोग बहुत करना पड़ता है। सर्वनाम शब्दों के अंत में त, त्र, था, दा आदि लगाने पर अव्यय बनाया जाता है, जैसे सर्वतः, कुतः, यतः, सर्वत्र, कुत्र, सर्वदा आदि। विशेषण, विशेषण शब्दों के प्रयोग की ओर भी छात्रों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। अंग्रेजी में विशेषण शब्द सभी लिंगों के समान रूप में ही रहते हैं, हिंदी में विकल्प है, अर्थात कुछ विशेषण शब्द एक से ही रहते हैं और कुछ के रूपों में लिंग तथा वचन के अनुसार भेद हो जाता है। संस्कृत में अनिवार्य रूप से विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिंग व वचन निर्धारण होता है। काल, विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराते समय काल का ज्ञान भली प्रकार देना चाहिए। संस्कृत में ल काल का सूचक है। संस्कृत में क्रियाओं को 10 लकारों लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लुंग तथा लिंग में विभक्त किया गया है। हिंदी में केवल 5 ही लकार प्रयुक्त होते हैं, शेष लकारों का प्रचलन अब नहीं रह गया है। छात्रों को केवल 5 लकारों का ज्ञान करा देना ही ठीक है। कुछ क्रियाओं के रूप 5 लकारों में याद करा देना ठीक रहेगा। क्रियाओं के रूपों की सिद्धि यहाँ पर अभीष्ट नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी कृदंतों की भी करा दी जाए तो ठीक रहेगा। उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग अमूल्य निधि हैं। ये उपसर्ग निम्नलिखित हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अभि, अप, अत, सु, उत, प्रति, परि, अप। उपसर्गों के योग से धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं, यथा हरति, विहरति, प्रहरति, अपहरति आदि। इसी बात को निम्नलिखित श्लोक में भी व्यक्त किया गया है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद्यंत्र नियते प्रहारहार संहार विहार परिहार परिहारवत। पाठ्यपुस्तक में व्याकरण का अंश, व्याकरण की अलग से पाठ्यपुस्तक हो सकती है किंतु इससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों की पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण का कुछ अंश ही हो। यह अंश इस प्रकार हो सकता है, प्रथम, छात्रों से व्याकरण की जटिलता, कठिनता और दुर्बोधता का भय दूर करते हुए विषय को अधिक से अधिक रोचक बनाने की चेष्टा हो जाए की जाए। द्वितीय, सामान्यतया प्रारंभिक कक्षाओं में लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकारों का ही प्रयोग होना चाहिए। तृतीय, कृदंत में क्त, तव्य और अनियर जैसे प्रत्ययों का विशेष प्रयोग हो। चतुर्थ, विशेषण और विशेष्य क का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ विशेष पाठों का समायोजन होना चाहिए। पंचम, उपसर्ग, वचन, कारक, समास, संधि आदि से संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। षष्ठ, प्रारंभिक पाठों में भाषा का क्रमिक विकास परिलक्षित हो, तदंतर शनय शनय शब्दावली तथा व्याकरण के नियमों में प्रवेश हो। सप्तम, प्रारंभिक कक्षाओं में संधियों का प्रयोग न्यूनतम हो और कक्षा 7 तक समासों का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए। अष्टम, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी सप्तमी की अपेक्षा कम होता है, अतः उसका प्रयोग षष्ठी व सप्तमी के पूर्व सिखाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के प्रयोग युक्त पाठ चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग से पहले आ सकते हैं। नवम, व्याकरण के अंश का संबंध। यदि व्याकरण की पृथक पुस्तक से और हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरण के कुछ अंशों से जोड़ दिया जाएगा तो उत्तम रहेगा। व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता। आजकल शिक्षा शास्त्री कभी कभी यह प्रश्न भी कर बैठते हैं कि व्याकरण पढ़ाया जाए या नहीं। वे सभी भाषाओं के विषय में प्रायः चर्चा कर बैठते हैं। उनके इन विचारों पर दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। व्याकरण शिक्षण के विषय में आजकल प्रचलित विचारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग उन व्यक्तियों का है जो व्याकरण की शिक्षा को अनिवार्य समझते हैं। उनके मतानुसार व्याकरण की शिक्षा के बिना भाषा शिक्षा सर्वथा अपूर्ण रहती है। द्वितीय वर्ग के विद्वान व्याकरण की शिक्षा को निरर्थक समझते हैं। उनके अनुसार भाषा बोलने, सुनने, लिखने तथा पढ़ने से आप अपने आप आ जाती है। उसके सीखने के लिए व्याकरण के नियमों को याद करना व्यर्थ है। वे प्रायः मनोविज्ञान के सिद्धांतों की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि भाषा केवल अनुकरण से आती है। एक तीसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि व्याकरण के बिना काम नहीं चल सकता। नियमों से मुक्त भाषा अटपटी हो जाएगी, अतः कुछ अंश तक व्याकरण अवश्य पढ़ाया जाए, किंतु यह व्याकरण व्यावहारिक तथा क्रियात्मक हो। वे औपचारिक रूप से व्याकरण के पढ़ने को अच्छा नहीं समझते। औपचारिक व्याकरण में सबसे पहले व्याकरण के नियम आते हैं और नियमों का प्रयोग बाद में बताया जाता है। व्यावहारिक व्याकरण में इसका उल्टा होता है। सबसे पहले व्याकरण का प्रयोग बताया जाता है, उसके बाद नियमों की जानकारी कराई जाती है। उपर्युक्त तीनों मतों में दूसरे मत से कोई समझौता नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा का ज्ञान तब तक असंभव होगा जब तक व्याकरण ना पढ़ाया जाए। तृतीय मत कुछ सत्य अवश्य है, किंतु व्यावहारिक व्याकरण प्रौढ़ों को संस्कृत सिखाने में तो कुछ उपयुक्त भी हो सकता है, पर बालकों को संस्कृत की शिक्षा देने में क्रियात्मक व्याकरण से काम नहीं चलेगा। बालकों को संस्कृत के अभ्यास का अवसर नहीं रहता और वे अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का स्वयं प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में उनसे यह आशा करना कि वे पहले व्याकरण का प्रयोग सीख जाएं और उसके पश्चात नियमों की ओर ध्यान दें, दुराशा मात्र होगी। मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त हो सकता है, किंतु संस्कृत के शिक्षण में इसकी उपयोगिता संदिग्ध है। क्रियात्मक व्याकरण का सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि छात्र उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं। संस्कृत की शिक्षा के लिए तो व्याकरण की शिक्षा अनिवार्यतः देनी ही होगी और उसकी उपयोगिता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। संस्कृत में व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं ज्योतिष्यामयनं चक्षुषः निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते। रामायण में भी कहा गया है, नूनं व्याकरणं कृत्सन मेनेन बहुधा श्रुतं बहु व्याहरत तानेन च किंचिद भाषितम्। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण के सभी स्तरों प्रारंभिक मध्य व उच्च पर व्याकरण की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना। द्वितीय, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान कराना। तृतीय, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना। चतुर्थ, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना। पंचम, उनकी भाषा के गुण दोषों को परखने की क्षमता प्रदान करना, जिससे वे शुद्ध शुद्ध लिख व बोल सकें। षष्ठ, सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करते हुए सिद्धांतों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना। व्याकरण की पाठ्य सामग्री का क्रम। व्याकरण शिक्षण के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि छात्रों को सर्वप्रथम क्या पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्य सामग्री को अनुसृत करने में मनोवैज्ञानिक क्रम तथा तार्किक क्रम दोनों का ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम से तात्पर्य यह है कि छात्र की मानसिक योग्यता एवं तत्परता के आधार पर सामग्री का चयन किया जाए, और तार्किक क्रम से तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु के विकास का क्रम ध्यान में रखा जाए, जिससे पूर्वापर पक्ष स्पष्ट हो जाए। आजकल बहुत से विद्वान केवल मनोवैज्ञानिक क्रम अपनाने का परामर्श देते हैं। संस्कृत व्याकरण में के संबंध में यह परामर्श अधिक उपयोगी नहीं है। वस्तुतः संस्कृत व्याकरण की पाठ्य सामग्री का चयन करते समय दोनों ही दृष्टिकोणों का आश्रय लिया जाना चाहिए। इन दोनों दृष्टियों से व्याकरण की पाठ्य सामग्री का क्रम निम्नलिखित ढंग से हो तो अच्छा रहेगा। प्रथम, संस्कृत वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण वर्णों का वर्गीकरण। द्वितीय, संधि, स्वर तथा व्यंजन, पहले सरल बाद की कक्षाओं में कठिन संधियां, तत्पश्चात विसर्ग संधि। तृतीय, नाम शब्द संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण, लिंग तथा वचन वेदों का स्पष्ट ज्ञान, विभिन्न कारकों का ज्ञान। चतुर्थ, आख्यात, पहले भुआदि गण की तत्पश्चात अन्य गणों की धातुएं, पहले आत्मनेपदी बाद में परस्मैपदी तथा उभयपदी, पहले केवल पांच लकार बाद में अन्य लकारों का ज्ञान। पंचम, समास, लगभग सभी समासों का ज्ञान प्रारंभ से ही कराया जाए तो अच्छा है। षष्ठ, क्रीदंत तथा तद्धित प्रत्यय। सप्तम, उपसर्ग, कुछ उपसर्गों का ज्ञान प्रारंभ से ही करा देना उचित है। शिक्षण विधि, व्याकरण की शिक्षण विधि पर अत्यधिक विवाद खड़ा कर दिया गया है। वर्तमान तथाकथित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों ने व्याकरण शिक्षण में बड़ी शिथिलता ला दी है। छात्राध्यापकों से प्रायः उनके प्रशिक्षक कहा करते हैं कि व्याकरण का पाठ रुचिकर बनाया जाए। संस्कृत के व्याकरण की शिक्षा को रुचिकर बनाना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस स्थल पर एक बात पुनः दोहरा देना उचित है कि संस्कृत में व्याकरण की शिक्षा आनुषंगिक या प्रासंगिक न होकर मुख्य है, और इसी विशेष रूप से विशेष समय पर पढ़ाना उचित है। व्याकरण शिक्षण की दो रीतियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं, निगमन रीति तथा आगमन रीति। निगमन रीति से पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उसे उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया जाता है। सिद्धांत या परिभाषा को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में निगमन रीति सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। उदाहरणार्थ, पहले एक नियम बता दिया गया, स साकम साधर्म समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, और बाद में रामण सह सीता अगच्छत वनम, मया साकम सह फल खादति आदि उदाहरण सामने रखे जाते हैं। आगमनात्मक रीति में पहले पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इन उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है और तत्पश्चात उन दृष्टांतों के आधार पर व्यापक नियम का अनुसंधान होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि उदाहरणों की सरलता एवं उनके औचित्य पर ही व्यापक नियम निर्भर करेगा, अतः उदाहरणों का चयन बड़ी सावधानी से होना चाहिए। आजकल अंग्रेजी और हिंदी का अध्यापन करने वाले छात्राध्यापक व्याकरण को प्रायः इसी विधि से पढ़ाते हैं। इस विधि में छात्र रुचि लेते हैं एवं उनकी तर्क शक्ति तथा अनुसंधानात्मक वृत्ति का विकास होता है। आचार्य पाणिनि के समय में संभवतः परायण पद्धति प्रचलित थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में पारायणिक का उल्लेख है। पारायणिक परायण करने वालों को कहते हैं। परायण में छात्र नियमों को रटता था, कई बार आवृत्ति करता था। 5 बार पढ़ने को पंचक अध्ययन, 5 बार बोलने को पंचवार, 5 प्रकार से पढ़ने को पंच रूप कहा जाता था। इसी प्रकार सप्तक अष्टक आदि परायण भी होते थे। उस समय व्याकरण में परीक्षा भी ली जाती थी। यह परीक्षा बहुत कुछ अशुद्धियों की गणना से संबंधित थी। 1 अशुद्धिकर्ता छात्र को एकायनिक, 2 अशुद्धिकर्ता को द्वैनयिक तथा 3 अशुद्धिकर्ता को त्रैनयिक कहते थे। परायण कई प्रकार के होते थे। कभी कोई संहिता परायण करता था, कोई पद परायण, तो कोई कर्म परायण। परायण करने वाले छात्र को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। आजकल की भांति गद्दीदार कुर्सी पर बैठकर परायण नहीं होता था। कुशासन पर बैठकर सूर्याभिमुख को ब्रह्मचारी कठोर परिश्रम से परायण करता था। कभी कभी वह मौन व्रत करता था, कभी वह केवल फल या दूध ग्रहण कर, कभी केवल पानी पीकर ही परायण करता था। किंतु इससे यह समझ लेना चाहिए कि उस समय व्याकरण शिक्षण की विधि यांत्रिक थी। परायण की निरस्ता को अन्य प्रविधियों द्वारा रोचक बनाया जाता था। व्याकरण के नियम को समझने की अन्य विधियों का भी कुछ उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने के व्याकरण में प्राकथन, भाषण, सम्यक बोध, प्रतिश्रवण, व्याख्यान आदि का उल्लेख मिलता है। बिना पूर्व तैयारी के तत्काल कुछ कहना प्राकथन कहा जाता है। भली प्रकार स्पष्टीकरण करना भाषण था। सच्चे ज्ञान का विश्लेषण करना एवं उसका मनन करना सम्यक बोध था। ज्ञान चर्चा को सुनना सुनाना प्रतिश्रवण के अंतर्गत था। व्याख्यान बड़ी ही प्रचलित प्रणाली थी। व्याख्यान के 4 अंग थे। प्रथम चर्चा, द्वितीय उदाहरण, तृतीय प्रत्युदाहरण तथा वाक्याविहार। चर्चा में पद विग्रह होता था और सूत्र को तोड़ दिया जाता था। उदाहरण और प्रत्युदाहरण में दृष्टांत दिए जाते थे तथा वाक्याविहार में वाक्य के अर्थ का विश्लेषण किया जाता था। पतंजलि ने अपने ग्रंथ लेखन में भी इसी व्याख्यान पद्धति का अनुसरण किया है। महाभाष्य के 1 अध्याय में वे लिखते हैं, न केवलानि चर्चा पदानि वृद्धः आत एच इति की तहिर उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाच्याध्याहार इत्येतत्सम मुदितम भवति। पतंजलि के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि वे व्याकरण शिक्षण के निगमन रीति का समर्थन करते हैं तथा भाषा का प्रयोग पक्ष उपेक्षित नहीं है। उदाहरण प्रत्युदाहरणों द्वारा वे भाषा के व्यवहृत रूप को सामने रख देते हैं। व्याकरण चाहे केवल क्रियात्मक रूप में पढ़ाया जाए, चाहे वह औपचारिक रूप में पढ़ाया जाए, चाहे वह निगमन रीति अपनाएं या आगमन रीति को व्यवहृत करें, किंतु एक बात यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा के व्याकरण शिक्षण में स्मरण का विशेष महत्व है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से समझना एवं प्रयोग करने की दृष्टि से व्याकरण के नियमों को याद करना, शब्द रूपों एवं धातु रूपों को याद करना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ से संस्कृत के विद्वानों ने पुस्तक कथा विद्या को परहस्तगम धनम की भांति कार्यकाल में अनुपयोगी बताया है। सहस्त्रों वर्षों में संस्कृत के पंडित व्याकरण एवं अन्य विधाओं की महत्वपूर्ण बातों को याद करते रहे हैं। स्मृति से ही वे न जाने कितने ग्रंथों को सुरक्षित रखे रहे हैं। कभी कभी तो संस्कृत के पंडितों की स्मरण शक्ति पर आश्चर्य होता है। कुछ पंडित तो संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ किए रहते हैं। संस्कृत की पाठशाला पद्धति में आज भी महत्वपूर्ण सूत्रों एवं सुभाषितों को कंठाग्र कराना पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग है। कंठाग्र करने की विधि में आज के मनोवैज्ञानिक चाहे जो भी दोष बताएं, किंतु इतना तो निश्चित ही है कि स्मृति मेधा का अनिवार्य लक्षण है। और आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी बात को समझ बूझकर याद किया जाए तो उससे कोई हानि नहीं। विषय पर अधिकार स्मृति का ही आता है। चाहे विषय को समझने के पश्चात याद किया जाए या विषय को याद करके समझा जाए, दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि एक विधि रुचिकर है तथा दूसरी नीरस। इससे परिणामों पर विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए संस्कृत के विद्वान उन सुकुमार मनोवैज्ञानिक नियमों को ज्ञानार्जन जैसी तपश्चर्या के लिए अधिक उपयुक्त नहीं समझते। उपर्युक्त विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि व्याकरण की यथासंभव आगमन रीति से पढ़ाया जाए, पर्याप्त उदाहरण दिए जाएं, तब नियम निर्धारण किया जाए और जहाँ तक हो सके उदाहरण संस्कृत साहित्य में पहले से ही आए हुए दृष्टांतों से किए जाएं, किंतु जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर निगमन रीति का भी आश्रय लेना में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। छात्रों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण नियमों को कंठाग्र करें। शिक्षण क्रम। व्याकरण के शिक्षण की योजना बनाते समय निम्नलिखित क्रम ध्यान में रखना लाभदायक रहेगा। प्रथम, सामान्य प्रारंभिक बातें। द्वितीय, सामान्य उद्देश्य। तृतीय, विशिष्ट उद्देश्य। चतुर्थ, पूर्व ज्ञान। पंचम, सहायक सामग्री। षष्ठ, प्रस्तावना। पूर्व पठित प्रकरण पर आवृत्त्यात्मक प्रश्न जिससे पहले की सामग्री को दोहराया जा सके। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार उद्देश्य कथन। सप्तम, पाठ्योपस्थान। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित कोई उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। कुछ वाक्य होंगे और उन पर प्रश्न किए जाएंगे। यह सोपान उदाहरण तथा तुलना का है। नोट, आगमन रीति से व्याकरण की शिक्षा देने में प्रस्तावना एवं पाठ्योपस्थापन में ही सर्वाधिक समय लगेगा। इसे शिक्षण दोष न समझा जाए। अष्टम, नियम निर्धारण। प्रस्तुत उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम अध्यापक छात्रों की सहायता से निकालेगा और बाद में सूत्र रूप में श्यामपट पर लिख देगा। नवम, पुनरावृत्ति। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत संस्कृत वाक्यों का छात्र हिंदी में अनुवाद करें और उसके पश्चात उपर्युक्त नियमों का प्रयोग करें। प्रस्तुत नियम से संबंधित कुछ हिंदी वाक्य अध्यापक श्याम पट पर लिखें और छात्रों को यह निर्देश दें कि उन हिंदी वाक्यों का वे संस्कृत में अनुवाद करें। दसम, गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित कार्य दिए जा सकते हैं। अ, संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। आ, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ई, रिक्त स्थानों की पूर्ति। कुछ संस्कृत वाक्य लिखे जाएं जिनमें कुछ शब्दों का स्थान रिक्त छोड़ दिया जाए। पठित नियम के आधार पर छात्र उस वाक्य को पूरा करें। व्याकरण पाठ योजना। विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, विषय संस्कृत व्याकरण, शीर्षक स्वर संधि, दिनांक कक्षा 7, वर्ग ख, कालांश चतुर्थ, अवधि 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य। प्रथम, छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना। द्वितीय, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना। तृतीय, शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान प्रदान करना। चतुर्थ, छात्रों की तर्क शक्ति का एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना। पंचम, उनकी भाषा के गुण दोषों को परखने की क्षमता प्रदान करना जिससे वे शुद्ध लिख सकें। षष्ठ, सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करते हुए सिद्धांतों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों की स्वर संधि के विभिन्न द्वितीय भेद, गुण संधि का अर्थात अ या आ के परे किसी भिन्न स्वर ई ई उ या री के होने पर दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ या अर हो जाता है, इसका सम्यक ज्ञान एवं अभ्यास कराना। पूर्व ज्ञान। प्रथम, छात्र संधि के सामान्य अर्थ और महत्व से परिचित हो चुके हैं। द्वितीय, छात्र स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि का अध्ययन और अभ्यास कर चुके हैं। सहायक सामग्री, श्याम पट पर लिखे हुए कतिपय संदिष्ट और संधेय पद, प्रस्तावना। छात्राध्यापक कक्षा के श्याम पट पर निम्नलिखित पदों को लिखकर छात्रों से प्रश्न करेगा। प्रथम, देवालय। द्वितीय, मुनीषा। प्रश्न, प्रथम पद का संधि विच्छेद करो। द्वितीय, इन दोनों शब्दों में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तृतीय, वर्णमाला में ये वर्ण किस नाम से विख्यात हैं। चतुर्थ, द्वितीय पद का संधि विच्छेद करो। पंचम, इन दोनों शब्दों में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। षष्ठ, वर्णमाला में ये वर्ण किस नाम से प्रसिद्ध हैं। सप्तम, स्वरों के मध्य होने वाली संधि का क्या नाम है। अष्टम, स्वर संधि का यह कौन सा भेद है। उद्देश्य कथन, इन शब्दों में दोनों और समान स्वरों के मध्य ही संधि हुई, किंतु यदि अ या आ के सामने कोई स्वर ई ई उ या री आ जाए तो उनके मेल से जो स्वर संधि होती है आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। पाठ्योपास्थापन, छात्राध्यापक छात्रों से प्रश्न करता जाएगा और श्याम पट पर लिखता जाएगा। एक, सुरेंद्र शब्द का क्या अर्थ है। दो, इस नाम का संधि विच्छेद करो। तीन, प्रथम शब्द के अंत में कौन सा स्वर है। चतुर्थ, द्वितीय शब्द के आरंभ में कौन सा स्वर है। पांच, संधि होने से अ और ई स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है। छः, देवताओं में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाती है। सात, गणेश शब्द का संधि विच्छेद करो। आठ, इन दोनों शब्दों में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। नौ, संधि होने से अ और ई के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है। दस, महेंद्र नाम का संधि विच्छेद करो। 11, इन दोनों शब्दों में किन वर्णों का मेल हुआ है। 12, संधि होने से आ और ई के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 13. अपने मित्र रमेश के नाम में संधि विच्छेद करो. 14. इस संधि में किन वर्णों का मेल हुआ है? 15. संधि होने से आ और ई के स्थान पर कौन सा वर्ण हो गया है? 16. परोपदेशे पांडित्यम, इस वाक्य में संधियुक्त पद कौन कौन से हैं? 17. परोपदेश का संधि विच्छेद करो. 18. इन संधि में किस किस वर्ण का मेल हुआ है? 19. अ और उ के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 20. जरलोमी शब्द का संधि विच्छेद करो. 21. इन दोनों शब्दों में किन स्वरों का मेल हुआ है? 22. अ और उ के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 23. महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद करो. 24. इन दोनों शब्दों में किन स्वरों का मेल हुआ है? 25. आ और उ के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 26. महोदधि शब्द का संधि विच्छेद करो. 27. इन दोनों शब्दों में किन वर्णों का मेल हुआ है? 28. आ और उ के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 29. ब्रह्मर्षि शब्द का संधि विच्छेद करो. 30. इन दोनों में किस किस वर्ण का मेल हुआ है? 31. अ और री के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? 32. महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करो. 33. इन दोनों शब्दों में किस किस वर्ण का मेल हुआ है? 34. आ और री के स्थान पर कौन सा स्वर हो गया है? नियम निर्धारण. इन उदाहरणों के आधार पर हम क्या नियम निर्धारित कर सकते हैं? यदि अ और आ के आगे ई और ई, उ या ऊ अथवा री आए तो उन दोनों स्वरों के मेल से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है. इसे गुण संधि कहते हैं. अध्यापक कथन. प्राचीन संस्कृत में री और लिरी शब्द स्वर भी वर्णमाला में स्वीकार किए जाते थे तथा इनका प्रयोग भी होता था, किंतु जिस संस्कृत का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें री तथा लिरी का प्रयोग नहीं होता है, अतः इनके उदाहरण नहीं बताए गए हैं. पाणिनि ने संधि में अ या आ के आगे री होने पर अर तथा लिरी होने पर अल होना बताया है. इस संधि को पाणिनि ने अपने व्याकरण में अधेक गुण सूत्र द्वारा गुण संधि बताया है. प्रयोग और अभ्यास या पुनरावृत्ति. छात्राध्यापक पूर्व लिखित पदों और शब्दों वाले लपेट श्यामपट्ट पर कोल खोलकर भित्ति पर लटकाएगा और छात्रों के अभ्यास हेतु कुछ पदों में संधि विच्छेद का आदेश देगा एवं कुछ शब्दों में संधि कराएगा, यथा प्रथम नरेंद्र, द्वितीय महेशः, तृतीय महोदय, चतुर्थ देवर्षि, पंचम सूर्योदय. संधि करो. प्रथम सर्व प्लस ईशः, द्वितीय पर प्लस उपकारः, तृतीय राजा प्लस ऋषियः, चतुर्थ ग्रीष्म प्लस ऋतुः, पंचम तीर्थ प्लस उदकम. गृह कार्य. अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रथम गद्य पाठ से इस संधि के 10 उदाहरण छाटिए एवं उनका संधि विच्छेद करिए. व्याकरण पाठ योजना द्वितीय. विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, विषय संस्कृत व्याकरणम, प्रकरण भूतकालिक कृत और कृतवत् कृदंत प्रत्यय, दिनांक कक्षा 10 वर्ग आ कालांश पंचम, अवधि 40 मिनट. सामान्य उद्देश्य. प्रथम छात्रों को संस्कृत भाषा की विशेषता से परिचित कराना. द्वितीय उन्हें शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना। तृतीय, उनमें शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना। चतुर्थ, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना। पंचम, उनको भाषा के गुण दोषों को परखने की क्षमता प्रदान करना, जिससे वे शुद्ध शुद्ध लिख व बोल सकें। षष्ठ, उन्हें सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करते हुए सिद्धांतों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना। सप्तम, छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्व से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को भूतकालिक और कृतवत् कृदंत प्रत्ययों का ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान, छात्रों को कृत्य प्रत्यय, तव्यत तव्य, अनियर यत आदि का ज्ञान है। सहायक सामग्री, लपेट श्याम पट पर लिखे हुए संस्कृत के कुछ वाक्य। प्रस्तावना, अध्यापक लपेट श्याम पर लिखे हुए निम्नलिखित उदाहरणों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रथम, एषः गंतव्यः मार्गः। द्वितीय, का एषा कथनीया वार्ता। तृतीय, दातव्यमिति हिरियान दीयते अनुपकारिणे। चतुर्थ, अस्य शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भाव्यं भवितव्यं वा। पंचम, एतद् पठनीयं पुस्तकम्। उपर्युक्त उदाहरणों पर निम्नलिखित प्रश्न किए जाएंगे। प्रथम, प्रथम वाक्य में गंतव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? द्वितीय, उपर्युक्त उदाहरणों में अन्य कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें तव्यत प्रत्यय है? तृतीय, कथनीया और पठनीय में कौन से प्रत्यय हैं? चतुर्थ, ये प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? उद्देश्य कथन, आज हम लोग इसी प्रकार के कुछ अन्य कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे जो भूतकालिक हैं। पाठ्योपस्थापन, प्रस्तुत पाठ को सुविधा की दृष्टि से दो अन्वितियों में विभक्त किया जाएगा। प्रथमान्विति कृत प्रत्यय, उदाहरण तथा तुलना। अध्यापक अग्रलिखित उदाहरणों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रथम, गतोहम कलिंगान। द्वितीय, जलम पातु यनाकक्षम वतीर्णः। तृतीय, गर्भस्थस्य च मे पूर्व पिता पञ्चत्वमागतम्। मन्मास्तुश्च तदा पापेर गोत्रजः सकल हृतम्। चतुर्थ, अहो विस्मृतम् मे हृदयम्। पंचम, प्रतिबुद्धामिरानि मकरंद पूर्णचंद्रेण। षष्ठ, आपदाम कतितः तदा इंद्रियाणाम संयमः। सप्तम, जितम अपत्य स्नेहेन। अष्टम, लक्ष्मीमा सृष्टो हरियः। उपर्युक्त उदाहरणों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन पर निम्नलिखित प्रश्न किए जाएंगे। गतोहम यमुना कक्षम तीर्णः पंचतत्व मागतः प्रतिबुद्धि दानी तथा लक्ष्मीमा सृष्टो में संधि विच्छेद करो। द्वितीय, रेखांकित शब्द किन किन क्रियाओं से बने हैं? निम्नलिखित मूल क्रियाओं को एक एक करके अध्यापक श्यामपट पर लिखता जाएगा। गम अव प्लस त्री, अ प्लस गम, ह वी प्लस स्मृति, प्रति धन बुध, कथ जी, आ प्लस स्लिस। तृतीय, छात्रों उपर्युक्त वाक्यों के अर्थों को ध्यान से देखो और यह पता लगाओ कि इनमें प्रयुक्त गतः अवतीर्णः आदि रेखांकित शब्द किस काल का बोध कराते हैं। चतुर्थ, उपर्युक्त उदाहरणों में क्रियाएं किस वाक्य में हैं। पंचम, रेखांकित पदों से लिंग और कारक बताओ। षष्ठ, रेखांकित पद मूल क्रियाओं में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर बने हैं। नियम निर्धारण, उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में कृत प्रत्यय लगाया गया है। कृत प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराता है, अतः यह भूतकालिक प्रत्यय है। यह कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। भूतकालवाची क्रियार्थक विशेषण है। अंग्रेजी में इसी अर्थ में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय में युक्त पद विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण विशेष्य कर्ता अथवा कर्म के ही लिंग और कारक में रखे जाते हैं। द्वितीयान्विति कृतवत् प्रत्यय, उदाहरण तथा तुलना। प्रथम, सारस्वत चापि जगाद वेदम नष्टम पुनर यम दद्य सुनम पूर्वे। व्यासम तथैनम बुधा बहुधा चकार न यम वशिष्ठ कृत वान शक्तियः। द्वितीय, धिक चापलम किमुक्ता वानसि। तृतीय, स तस्मिन् पुरे अन्य देश दाग तांस चुतरो विप्रान बहूनि वस्तूनि विक्रीणतो दृष्टिव्या चिंतितवान अहो केनोपायनेषां धनं लवे। चतुर्थ, एकैका काष्टिक प्रीत्या काष्ठे द्वैद्वै ददो मम विक्रीतवान हन्तानि नीत्वा काष्ठानि चापणे। पंचम, अनेन मधुरालापेन स छपाम क्षति छपितवती। षष्ठ, रामः वाणेन रावणं हतवान। उपर्युक्त उदाहरणों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन पर निम्नलिखित प्रश्न किए जाएंगे। प्रथम, किमुक्त वानसि विक्रीत वानहम में संधि विच्छेद करो। द्वितीय, रेखांकित शब्द किन किन क्रियाओं से बने हैं। निम्नलिखित मूल क्रियाओं को एक एक करके अध्यापक श्यामपट पर लिखता जाएगा। क्रि वच चिंत विधन क्रि छप प्लस हन। तृतीय, उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्द किस काल का बोध कराते हैं। चतुर्थ, उपर्युक्त उदाहरणों में क्रियाएं किस वाच्य की हैं। पंचम, रेखांकित पदों के लिंग और कारक बताओ। षष्ठ, रेखांकित पद मूल क्रियाओं में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर बने हैं। नियम निर्धारण, उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में कृतवत् प्रत्यय लगाया गया है। यह भी कृत प्रत्यय की भांति भूतकालिक क्रियार्थक विशेषण है और विशेष्य के लिंग और कारक से अनुशासित है। अंतर केवल इतना है कि यह कृतवाच्य में प्रयुक्त होता है, जबकि कि कृत कर्मवाच्य और कृतवाच्य दोनों में। पुनरावृत्ति, प्रथम, उपर्युक्त उदाहरणों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। द्वितीय, निम्नलिखित क्रियाओं में कृत और कृतवत् प्रत्यय जोड़िए। पठ इसना पा भू क्री त्यज लिख। तृतीय, निम्नलिखित पदों में क्रिया और प्रत्यय पृथक कीजिए। सिक्तिवत तृप्तवान कीर्ण उदितवान उषितवान। चतुर्थ, कृत और कृतवत् प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क उसने कार्य किया। ख राम ने लेख लिखा। द्वितीय, ख सुधा ने अपना पाठ पढ़ा। घ सरला ने स्नान किया। अंग हरि ने देवों की रक्षा की। गृह कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम भद्रपुरम। ख वकुष्ठम रिक्त स्थान सह। ग अत्र भवतो परस्परेण ज्ञान संघर्षो रिक्त स्थान। घ विष्णुवा शेषम रिक्त स्थान। अंग सह शिवम रिक्त स्थान।